मेडोरा मौसी, आप दोनों कोई साजिश तो नहीं रच रही? कमरे में आती श्रीमती ओलेंस्का ने पुकार कर कहा। वे नृत्य समारोह जाने वालों सी सजी थीं। उन पर सब कुछ हौले हौले झिलमिलाता था, मानो पोशाक मोमबत्ती की किरणों से बुनी हो, और सिर यों ऊंचा था जैसे कोई सुंदरी प्रतिद्वंद्वियों भरे कक्ष को ललकारती हो। हम तो कह रही थीं, बेटी, कि यहाँ तेरे लिए एक प्यारा अचरज रखा है, मार्किज़ा मैनसन ने उठकर शरारत से फूलों की ओर इशारा करते हुए कहा। श्रीमती ओलेंस्का ठिठकी और गुलदस्ते को देखा। रंग नहीं बदला, पर गुस्से की एक सफेद कौंद गर्मियों की बिजली सी उन पर से गुज गई। आह, वे ऐसी तीखी आवाज में चीखी जो आर्चर ने उनसे कभी नहीं सुनी थी। ऐसा हास्यास्पद गुलदस्ता भला कौन भेजता है? गुलदस्ता क्यों, और आज ही की रात क्यों? मैं किसी नाच में नहीं जा रही, मैं कोई सगाई वाली लड़की भी नहीं, पर कुछ लोग हमेशा बेवकूफी ही करते हैं।
वे फिर दरवाजे तक गईं, उसे खोला और पुकारा, नास्तासिया।
हरदम हाजिर नौकरानी तुरंत आ गई और आर्चर ने सुना कि श्रीमती ओलेंस्का इतालवी में धीरे धीरे जानबूझकर साफ बोल रही है, मानो चाहती हो कि वो समझे। इसे कूड़े में फेंक दो। नास्तासिया के हक्का बक्का ताकने पर उन्होंने जोड़ा, नहीं, बेचारे फूलों का दोष नहीं, लड़के से कहो तीन घर छोड़कर विंसेंट साहब के यहाँ दे आए। वही सांवले सज्जन जो यहाँ खाने पर थे, उनकी पत्नी बीमार है, शायद इनसे उन्हें खुशी मिले। लड़का बाहर गया है तो तू ही चली जा, मेरी जान ले, मेरा लबादा ओढ़ और दौड़ जा। मैं इसे अभी इसी वक्त घर से बाहर चाहती हूँ, और खबरदार ये मत कहना कि मैंने भेजे हैं। उन्होंने मखमली लबादा नौकरानी के कंधों पर डाला और दरवाजा जोर से बंद कर बैठक में लौटी। लेस तले उनका सीना उठ रहा था। एक पल आर्चर को लगा कि वे रो पड़ेंगी, पर वे हंस पड़ी और दोनों को बारी बारी देखकर अचानक पूछा, और आप दोनों दोस्ती हो गई?
ये तो आर्चर साहब बताएंगे। बेटी, तू कपड़े पहन रही थी और वे धीरज से बैठे रहे।
हाँ, मैंने आप लोगों को भरपूर समय दिया, मेरे बाल काबू में ही नहीं आ रहे थे, श्रीमती ओलेंस्का ने ऊंचे जूड़े पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया। इससे याद आया, डॉक्टर कारवर तो चले गए लगते हैं, और मौसी, आप ब्लैंकर के यहाँ लेट हो जाएंगी।
आर्चर साहब मौसी को गाड़ी तक पहुँचा देंगे। वे मार्किज़ा के पीछे दालान तक गईं, उन्हें जूतों, शालों और मफलरों के बीच जमते देखा और दहलीज से पुकारा, याद रहे, गाड़ी 10 बजे मुझे लेने लौट आए। फिर बैठक में लौटी। भीतर आते आर्चर ने उन्हें अंगीठी के पास आईने में अक्स निहारते पाया। न्यूयॉर्क में रिवाज नहीं था कि कोई महिला नौकरानी को मेरी जान कहे और अपना लबादा ओढ़ाकर काम पर भेजे, और आर्चर भीतर की गहरी हलचल के बीच उस दुनिया की अजीब सहरन महसूस कर रहा था, जहां भावना ओलंपस के देवताओं सी तेजी से कर्म बनती थी। आर्चर पीछे आया तो श्रीमती ओलेंस्का हिली नहीं,
और एक क्षण दोनों की आंखें आईने में मिली, फिर वे मुड़ी, सोफे के कोने में जा गिरी और आह भरकर बोली,
एक सिगरेट भर का समय है। आर्चर ने डिबिया बढ़ाई, लकड़ी की पतली फांस जलाई, लॉ ने उनका चेहरा रोशन किया तो उन्होंने हंसती आंखों से पूछा, गुस्से में मैं कैसी लगती हूँ? आर्चर पल भर ठिठका, फिर जैसे थान कर बोला, अब समझ में आया कि आपकी मौसी आपके बारे में क्या कहती थी। मुझे पता था कि उन्होंने मेरी बात की है।
क्या कहा उन्होंने? कहा कि आप हर तरह की चीजों की आदि रही हैं, शान शौकत, मौज मजे, रोमांच, जो हम यहाँ आपको कभी नहीं दे सकते। श्रीमती ओलेंस्का धुएं के घेरे में फीकी मुस्कान मुस्कराई। मेडोरा लाइलाज रूमानी है, इसी ने उनकी बहुत सारी कमियां पूरी की है। आर्चर फिर हिचकिचाया, फिर जोखिम उठाया, आपकी मौसी की रूमानियत हमेशा सटीक होती है, यानी क्या वे सच बोलती है? उन्होंने सोच कर कहा, बताती हूँ, वे जो भी कहती है उसमें थोड़ा सच और थोड़ा झूठ मिला होता है। पर आप पूछ क्यों रहे हैं? उन्होंने क्या कहा? उसने आग में देखा, फिर उनके दमकते रूप की ओर। ये सोचकर उसका दिल कसा कि इस अंगीठी के सामने ये उन दोनों की आखिरी शाम है, और अभी गाड़ी उन्हें ले जाने आ जाएगी। वे कहती है, उनका दावा है कि इन्हीं दिनों की मिर्चले।
काउंट ओलेंस्की ने उनसे कहा है कि वे आपको उसके पास लौटने के लिए मनाएं। श्रीमती ओलेंस्का ने कोई जवाब नहीं दिया। वे सिगरेट आधी उठाए निश्चल बैठी रहीं, चेहरे का भाव नहीं बदला। आर्चर पहले से जानता था कि उन्हें चौंका हुआ देखना कितना कठिन है, तो आपको मालूम था, वो बोल पड़ा,
वे इतनी देर चुप रहीं कि सिगरेट की राख गिर पड़ी। उन्होंने उसे फर्श पर झाड़ दिया। मौसी ने एक चिट्ठी का इशारा किया था। बेचारी मौसी, मेडोरा के इशारे। क्या वे आपके पति के कहने पर यहाँ आई हैं? ये भी कोई नहीं जानता। मुझसे बोली कि उन्हें डॉक्टर कार्वर से आत्मिक बुलावा मिला है, वो जो भी बला हो। डर है कि मेडोरा डॉक्टर कार्वर से शादी करना चाहती हैं। बेचारी मेडोरा, उन्हें हमेशा किसी न किसी से शादी करनी होती है, या शायद क्यूबा वाले ही उनसे ऊब गए और विदा कर दिया। मेरा ख्याल है वे उनके साथ पगार पर संगिनी बनकर थीं। सच कहूं मैं नहीं जानती वे क्यों आईं, पर आप मानती हैं कि उनके पास सचमुच आपके पति की चिट्ठी है? श्रीमती ओलेंस्का फिर चुपचाप सोच में डूबी। अंत में बोली, आखिरकार इसी की तो उम्मीद थी। आर्चर उठा और अंगीठी से टिक गया।
अचानक एक बेचैनी ने उसे जकड़ लिया। ये सोचकर उसकी जबान जम गई कि समय बीत रहा है और किसी भी पल लौटती गाड़ी के पहियों की आवाज आ सकती है। आपकी मौसी को यकीन है कि आप पति के पास लौट जाएंगी? श्रीमती ओलेंस्का ने झटके से सिर उठाया। चेहरे पर गहरी लाली दौड़ गई, गर्दन और कंधों तक फैल गई। वे कम ही लाल होती थी और होती तो ऐसा लगता जैसे जलने का दर्द हो। लोगों ने मेरे बारे में बहुत सी बेरहम बातें मानी हैं। उन्होंने कहा, ओह एलेन, माफ कीजिए, मैं मूर्ख हूँ, निर्दयी हूँ। वे हल्का सा मुस्कराईं। आप बहुत बेचैन हैं, आपकी अपनी उलझने हैं। जानती हूँ आपको लगता है कि वेलांट परिवार आपकी शादी के मामले में नासमझी कर रहा है, और मैं आपसे सहमत हूँ। यूरोप में ये लंबी अमेरिकी सगाइयां समझी ही नहीं जाती। शायद वे लोग हम जितने ठंडे मिजाज के नहीं। उन्होंने हम को हल्के जोर से कहा, जिससे उसमें व्यंग्य की झलक आ गई। आर्चर ने वो व्यंग्य महसूस किया, पर छेड़ने की हिम्मत नहीं हुई। शायद उन्होंने जानबूझकर बात अपने मामलों से हटा दी थी। उसके शब्दों से इतनी चोट खाने के बाद और उन्हीं की राह चलना ठीक लगा, पर बीतते समय के एहसास ने उसे बेचैन कर दिया। वो सह नहीं सकता था कि उनके बीच फिर शब्दों की दीवार खड़ी हो जाए।
हाँ, उसने अचानक कहा, मैं दक्षिण गया था, मैं से कहने कि हम ईस्टर के फौरन बाद शादी कर ले। उसके न होने की कोई वजह नहीं, और मैं आपको मना नहीं पाई। वो जो आप पर जान छिड़कती है, मैं तो उसे इतनी समझदार मानती थी कि वो ऐसी बेतुकी रस्मों की गुलाम न हो। वो जरूरत से ज्यादा समझदार है, वो उनकी गुलाम नहीं। श्रीमती ओलेंस्का ने उसे देखा, तब तो मैं समझी नहीं। आर्चर लाल पड़ा और जल्दी जल्दी बोला, हमारे बीच एक खुली बातचीत हुई, शायद पहली। उसे मेरी जल्दबाजी बुरा शगुन लगती है। हे भगवान, बुरा शगुन! उसके ख्याल में इसका मतलब है कि मुझे भरोसा नहीं कि मैं उसे प्यार करता रहूंगा। यानी वो समझती है कि मैं किसी और से ज्यादा प्यार करता हूँ और उससे बचने के लिए जल्दी शादी करना चाहता हूँ। श्रीमती ओलेंस्का ने दिलचस्पी से इस बात को उलट पलट कर देखा, पर अगर वो ऐसा सोचती है तो वो खुद जल्दी क्यों नहीं करती? क्योंकि वो वैसी नहीं है, वो कहीं ज्यादा उदात्त है, इसीलिए लंबी सगाई पर और भी अड़ी है। मुझे समय देने के लिए, उस दूसरी औरत की खातिर उसे छोड़ देने का समय, अगर मैं चाहूं तो। श्रीमती ओलेंस्का अंगीठी की ओर झुकी और स्थिर आंखों से
आग को ताकने लगी। सुनसान सड़क पर से उनकी गाड़ी के पास आते घोड़ों की टापे सुनाई दी। बड़ी उदात्त है, उन्होंने हल्की कांपती आवाज में कहा। हाँ, पर हास्यास्पद। हास्यास्पद इसलिए कि आप किसी और से प्रेम नहीं करते? नहीं, इसलिए कि मेरा किसी और से विवाह का इरादा ही नहीं। आह, फिर लंबी चुप्पी छा गई। अंत में उन्होंने ऊपर देखकर पूछा, वह दूसरी औरत, क्या वो आपसे प्रेम करती है? अरे, कोई दूसरी औरत है ही नहीं, मेरा मतलब जिसे मैं सोचती है उसने कभी नहीं। तो फिर इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हैं? आपकी गाड़ी आ गई, आर्चर ने कहा। वे आधी उठी और खोई खोई आंखों से इधर उधर देखा।
उनका पंखा और दस्ताने सोफे पर बगल में रखे थे और उन्होंने अनमने ढंग से उन्हें उठा लिया।
हाँ, अब चलना चाहिए, श्रीमती स्ट्रूथर्स के यहाँ। हाँ, मुस्कराकर जोड़ा, जहाँ बुलाया जाए वहाँ जाना ही पड़ता है, वरना बहुत अकेली पड़ जाऊंगी। आप भी साथ क्यों नहीं चलते? आर्चर को लगा कि चाहे जो हो जाए उसे उन्हें रोक लेना है, शाम का बचा हिस्सा अपने लिए पक्का कर लेना है। उनके प्रस्ताव को अनसुना कर वो अंगीठी से टिका रहा, आंखें उनके दस्ताने पंखा थामे हाथ पर गड़ी।
मानो देख रहा हो कि क्या उसमें इन्हें गिरवा देने की ताकत है। मैंने सच भांप लिया। उसने कहा, दूसरी औरत सचमुच है, पर वो नहीं जिसे मैं समझती है। एलेन ओलेंस्का ने न जवाब दिया न हिली। थोड़ी देर बाद वो उनके पास बैठा, उनका हाथ लिया और धीरे से खोल दिया। दस्ताने और पंखा दोनों के बीच सोफे पर गिर पड़े। वे झटके से उठी, खुद को छुड़ाकर अंगीठी के दूसरी ओर हट गई।
ओह, मुझसे इश्क मत जताइए, बहुतों ने जताया है, उन्होंने त्योरी चढ़ाकर कहा।
आर्चर का रंग बदला, वो भी उठ खड़ा हुआ। इससे कड़वा उलाहना वे उसे दे ही नहीं सकती थी।
मैंने आपसे कभी इश्क नहीं जताया, उसने कहा, और कभी जताऊंगा भी नहीं। पर आप वो स्त्री हैं जिससे मैं विवाह करता। अगर हम दोनों के लिए ये संभव होता, हम दोनों के लिए संभव होता। उन्होंने सच्चे अचरज से उसे देखा। और ये आप कह रहे हैं, जब सब कुछ असंभव आपने ही बनाया। वो उन्हें ताकता रहा, अंधेरे में टटोलते हुए, जिसे अचानक चौंधियाती रोशनी के एक तीर ने चीर दिया।
मैंने सब असंभव बनाया, आपने ही, वे चीखी। होठ उस बच्चे की तरह कांप रहे थे जो अभी रो पड़ेगा। तलाक आपने ही तो छुड़वाया, ये दिखाकर कि वो कितना स्वार्थी कितना बुरा है, कि विवाह की गरिमा बचाने के लिए खुद को कैसे होम करना पड़ता है, कि परिवार को खुले कलंक और चर्चा से बचाना है। और चूंकि मेरा परिवार आपका होने वाला था, मैं की खातिर आपकी खातिर मैंने वही किया जो आपने कहा, जो आपने साबित करके दिखाया कि मुझे करना चाहिए। वे अजीब सी हंसी हंस पड़ी। मैंने कभी छिपाया नहीं कि ये सब मैंने आपके लिए किया। वे फिर सोफे पर ढह गईं, उत्सवी पोशाक की तहों के बीच यों सिमटी जैसे बहाना नाच में कोई घायल मुखौटा। आर्चर अंगीठी के पास अडिग खड़ा उन्हें देखता रहा। हे भगवान, वो कराहा, जब मैं समझता था।
क्या समझते थे, मत पूछिए कि मैं क्या समझता था।
उन्हें ताकते हुए उसने वही जलती लाली गर्दन से चेहरे तक चढ़ते देखी। वे तनकर बैठी और कठोर गरिमा से उसका सामना किया। मैं पूछती हूँ। अच्छा तो सुनिए, जो चिट्ठी आपने मुझे पढ़वाई थी उसमें ऐसी बातें थी। मेरे पति की चिट्ठी?
हाँ, उस चिट्ठी में डरने लायक कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं। मुझे डर था तो बस इतना कि परिवार पर, आप पर और मेर पर कलंक और शर्मिंदगी न आए। हे भगवान, वो फिर कराहा और चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया। जो चुप्पी छाई वो न लौटने वाली सच्चाई के बोझ सी उन पर आ पड़ी। आर्चर को लगा जैसे वो उसे अपनी ही समाधि के पत्थर की तरह दबा रही हो। जहां तक भविष्य दिखता था, कुछ भी ये बोझ उसके सीने से कभी नहीं हटा पाएगा। वो हिला नहीं, चेहरे से हाथ नहीं हटाए, ढंग की आंखें घुप अंधेरे को ताकती रहीं। कम से कम मैंने आपसे प्रेम किया, वो बमुश्किल कह पाया। अंगीठी के उस पार सोफे के उस कोने से जहां वो उन्हें अब भी सिमटी बैठी समझ रहा था, बच्चे जैसी दबी सिसकी सुनाई दी। वो चौंक कर उठा और उनके पास गया। एलेन, ये कैसा पागलपन, क्यों रो रही है?
कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो मिट न सके। मैं अब भी आजाद हूँ और आप भी होने वाली है।
उसने उन्हें बाहों में ले लिया, उनका चेहरा भीगे फूल सा उसके होंठों से लगा और दोनों के पाले सारे व्यर्थ डर सूरज उगते ही मिटते प्रेतों की तरह उड़ गए। अब उसे अचरज बस इस बात का था कि छू लेने भर से सब इतना सरल हो गया और वो 5 मिनट कमरे के उस पार खड़ा उनसे बहस करता रहा था। उन्होंने उसके चुंबन का उत्तर दिया, पर एक पल बाद उसने महसूस किया कि उनकी देह उसकी बाहों में सख्त हो रही है। फिर उन्होंने उसे कोमलता से परे किया और उठ खड़ी हुई। आह, मेरे बेचारे न्यूलैंड, शायद ये होकर ही रहना था, पर इससे हालात नहीं बदलते, उन्होंने कहा। इस बार अंगीठी से टिकी उसे ऊपर से देखते हुए, इसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी है। नहीं नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए, हो नहीं सकता। आप मैं वेलेंट से बंधे है और मैं विवाहिता हूँ। वो भी तमतमाए चेहरे और दृढ़ भाव से उठ खड़ा हुआ।
बकवास, अब ये सब कहने में बहुत देर हो चुकी। हमें खुद से या दूसरों से झूठ बोलने का हक नहीं। आपके विवाह की बात नहीं करता, पर क्या आपको लगता है इसके बाद मैं से शादी कर सकता हूँ? वे चुप रहीं, पतली कोहनियाँ अंगीठी की मुंडेर पर टिकाए, उनकी पार्श्व छवि आईने में झलक रही थी। जूड़े से एक लट खुलकर गर्दन पर आ गिरी थी। वे थकी हारी लगभग बूढ़ी लग रही थीं। मुझे नहीं लगता, उन्होंने आखिर कहा, कि आप ये सवाल मैं से पूछ पाएंगे। गलत कहा? आर्चर ने लापरवाह ढिठाई से कंधे उचकाए।
किसी और राह के लिए बहुत देर हो चुकी। आप ये इसलिए कह रहे हैं कि इस घड़ी यही कहना सबसे आसान है, इसलिए नहीं कि ये सच है। सच तो ये है कि अब उस राह के सिवा हर राह के लिए देर हो चुकी है जो हम दोनों पहले ही चुन चुके थे। आह, मैं आपको समझ नहीं पाता। उन्होंने जबरदस्ती एक दयनीय मुस्कान खींची जिसने चेहरे को नरम करने की जगह और सिकोड़ दिया। आप इसलिए नहीं समझते कि अब तक अंदाजा नहीं लगा पाए कि आपने मुझे कितना बदल दिया है।
ओ, शुरू से ही, इसके बहुत पहले से कि मैं जानती कि आपने क्या क्या किया है।
मैंने क्या क्या किया? हाँ, पहले पहल मुझे पता ही नहीं चला कि यहाँ लोग मुझसे कतराते हैं, कि वे मुझे कोई भयानक चीज समझते हैं। सुना है एक भोज में लोगों ने मुझसे मिलने तक से इनकार कर दिया था। ये सब मुझे बाद में पता चला, और ये भी कि आपने अपनी माँ को साथ लेकर वैन डर लाइडेन दंपति के यहाँ जाने को राजी किया और ब्यूफर्ट के नाच में अपनी सगाई की घोषणा पर अड़े रहे ताकि मेरे पीछे एक नहीं दो परिवार खड़े हों। इस पर वो हंस पड़ा। सोचिए तो, वे बोली, मैं कितनी नादान, कितनी बेखबर थी। दादी ने एक दिन अचानक कहना दिया होता तो मुझे इनमें से कुछ पता ही नहीं चलता। मेरे लिए न्यूयॉर्क का मतलब बस शांति और आजादी था। घर लौट आना और अपनों के बीच होने की खुशी इतनी थी कि हर मिलने वाला मुझे भला और स्नेही लगता, मुझसे खुश लगता। पर शुरू से ही, उन्होंने आगे कहा, मुझे लगा कि आपसा भला कोई नहीं। जो चीजें पहले इतनी कठिन और गैर जरूरी लगती थीं, उनके कारण समझाने वाला आपके सिवा कोई नहीं था। बहुत अच्छे लोग मुझे कायल नहीं कर पाते थे। लगता था उन्हें कभी किसी प्रलोभन ने छुआ ही नहीं। पर आप जानते थे, आप समझते थे, आपने महसूस किया था कि बाहर की दुनिया कैसे अपने सुनहरे हाथ बढ़ाकर खींचती है, और फिर भी आप उसकी मांगों से घृणा करते थे। बेवफाई, निर्दयता और बेपरवाही से खरीदे सुख से घृणा करते थे। यही वो चीज थी जो मैंने पहले कभी नहीं जानी थी, और वो मेरे जाने हुए सब कुछ से बेहतर है।
वे बिना आंसू, बिना आवेग के धीमी सधी आवाज में बोल रही थी, और उनका हर शब्द उसके सीने पर पिघले शीशे सा गिरता था। झुका हुआ, सिर हाथों में थामे, वो कालीन को और पोशाक के नीचे से झांकती साटन की जूती की नोक को ताकता रहा। अचानक वो घुटनों पर झुका और उस जूती को चूम लिया। वे झुकी, उसके कंधों पर हाथ रखे और उसे इतनी गहरी आंखों से देखा कि वो उस दृष्टि तले हिल न सका। ईश्वर के लिए, जो आपने बनाया है उसे मत बिगाड़िए, वे पुकार उठी। मैं अब पुराने ढंग से सोचने की ओर नहीं लौट सकती। आपसे प्रेम करना है तो मुझे आपको छोड़ना होगा। उसकी दोनों बाहें तड़प कर उनकी ओर बढ़ी, पर वे एक कदम पीछे हट गईं। दोनों आमने सामने खड़े रहे, बीच में बस वो दूरी जो उनके शब्दों ने रच दी थी। तभी आर्चर का गुस्सा फट पड़ा, तो ब्यूफर्ट मेरी जगह वही लेगा?
शब्द निकलते ही उसने वैसी ही गुस्से की भड़ास की उम्मीद की, और उसे अपने भीतर की आग के लिए ईंधन की तरह हाथों हाथ लेता। पर श्रीमती ओलेंस्का बस थोड़ी और पीली पड़ गई, बाहें आगे लटकाए, सिर हल्का झुकाए यों खड़ी रही मानो किसी गंभीर प्रश्न पर विचार कर रही हो। वह अभी श्रीमती स्ट्रूथर्स के यहाँ आपकी राह देख रहा है, जाइए ना उसके पास, आर्चर ने ताना मारा। श्रीमती ओलेंस्का घंटी बजाने मुड़ी। नौकरानी आई तो बोली, आज शाम मैं बाहर नहीं जाऊंगी, गाड़ी से कहो जाकर मार्कीजा साहिबा को ले आए। दरवाजा फिर बंद हुआ तो भी आर्चर कड़वी नजरों से उन्हें देखता रहा। ये कुर्बानी किस लिए? आपने खुद कहा कि आप अकेली हैं, तो मुझे हक नहीं कि आपको आपके दोस्तों से दूर रखूं। वे भीगी पलकों तले हल्का सा मुस्कराई। अब मैं अकेली नहीं रहूंगी। पहले अकेली थी, डरती थी, पर अब वो सूनापन और अंधेरा जा चुका है। अब जब अपने भीतर लौटती हूँ तो उस बच्चे जैसा लगता है जो रात में ऐसे कमरे में जाए जहाँ हमेशा एक दिया जलता रहता है।
उनकी आवाज और भाव अब भी उन्हें एक कोमल अगम्य आभा में लपेटे थे, और आर्चर फिर कराह सा उठा। मैं आपको समझ नहीं पाता, पर मे को तो समझते हैं। इस पलटवार पर आर्चर लाल पड़ गया, पर नजरें उन्हीं पर टिकी रहीं। मे मुझे छोड़ देने को तैयार है क्या? उसके आगे घुटने टेक कर शादी जल्दी करने की भीख मांगने के 3 दिन बाद उसने इनकार किया, इससे मुझे हक मिल गया। आह, वो शब्द कितना कुरूप है, ये तो आपने ही मुझे सिखाया था, वे बोली। आर्चर हारी हुई हताशा से मुड़ गया,
जैसे घंटों खड़ी चट्टान चढ़ने के बाद चोटी छूते ही हाथ फिसल जाए और वो अंधेरे में जा गिरे। उन्हें एक बार फिर बाहों में ले पाता तो उनकी हर दलील बहा ले जाता, पर उनके चेहरे और भंगिमा की वो अबूझ निर्लिप्तता और उनकी सच्चाई के प्रति श्रद्धा उसे दूर धकेलती रही। अंत में वो फिर गिड़गिड़ाने लगा, अभी हमने ऐसा किया तो आगे और बुरा होगा, सबके लिए बुरा। नहीं नहीं नहीं, वे लगभग चीख पड़ी, मानो उससे डर रही हों। उसी क्षण घर की घंटी की लंबी झनकार कमरों में फैल गई।
उन्होंने दरवाजे पर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज नहीं सुनी थी। दोनों ठिठके खड़े चौंकी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे।
बाहर नास्तासिया के कदम गलियारा पार कर गए, बाहरी दरवाजा खुला, फिर वो भीतर आई और काउंटेस ओलेंस्का को एक तार थमाया। वे मोहतरमा फूल देखकर बहुत खुश हुई। नास्तासिया ने एप्रन संवारते हुए कहा, समझी कि उनके पति ने भेजे हैं। थोड़ा रोई और बोली कि ये पागलपन है। श्रीमती ओलेंस्का मुस्कुराकर पीला लिफाफा ले लिया, उसे खोला, दिए के पास ले गए, फिर दरवाजा बंद होते ही तार आर्चर की ओर बढ़ा दिया। वो सेंट ऑगस्टीन से भेजा गया था, काउंटेस ओलेंस्का के नाम और उसमें लिखा था, दादी का तार काम कर गया, मम्मी पापा ईस्टर के बाद शादी पर राजी, न्यूलैंड को तार भेजूंगी, इतनी खुश हूँ कि कह नहीं सकती, तुमसे कृतज्ञ प्रेम, तुम्हारी आभारी मैं।
आधे घंटे बाद जब आर्चर ने अपने घर का दरवाजा खोला तो दालान की मेज पर अपनी चिट्ठियों और पर्चों के ऊपर वैसा ही एक लिफाफा पाया। संदेश ये भी मे वेलैंड का था, माता पिता राजी, शादी ईस्टर के बाद के मंगलवार दोपहर 12 बजे ग्रेस चर्च में, 8 सहेलियां चाहिए, पादरी जी से बात कर लेना, बेहद खुश, प्यार सहित मे। आर्चर ने पीला कागज, यो मसला मानो इबारत मिट जाएगी, फिर जेब से छोटी डायरी निकाली और कांपती उंगलियों से पन्ने पलटे, पर जो ढूंढ रहा था वो नहीं मिला। मुड़ा तोड़ा तार जेब में ठूंस कर वो सीढ़ियां चढ़ गया। सीढ़ियों के ऊपर उस छोटे कमरे से रोशनी छन रही थी जो जेनी का ड्रेसिंग रूम और निजी ठिकाना था। भाई ने अधीर होकर दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला और बहन अपने चिर परिचित बैंगनी फलालैन के गाउन में, बालों में कागज के बल डाले सामने खड़ी थी। चेहरा पीला और परेशान था। न्यूलैंड, उस तार में कोई बुरी खबर तो नहीं? मैं यूं ही जागती रही, कहीं जेनी की जिज्ञासा से कोई चिट्ठी सुरक्षित नहीं थी। उसने सवाल अनसुना कर पूछा, जेनी, इस साल ईस्टर कब है? वो उसके इस विधर्मी अज्ञान पर भौचक रह गई। ईस्टर न्यूलैंड अप्रैल के पहले हफ्ते में, और कब, क्यों? पहले हफ्ते में, उसने फिर डायरी के पन्ने पलटे, दबी जबान तेजी से हिसाब लगाया। पहला हफ्ता कहा न तूने? उसने सिर पीछे झटक कर लंबा ठहाका लगाया। भगवान के लिए हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ, बस एक महीने बाद मेरी शादी है। जेनी उसके गले से झूल गई और उसे बैंगनी फलालैन के सीने से भींच लिया। ओ न्यूलैंड, कितना बढ़िया, मैं कितनी खुश हूँ, पर तुम हंसे क्यों जा रहे हो? चुप भी करो, माँ जाग जाएंगी।